शान गुस्से में घर से बाहर निकला। ड्राइवर कार लेकर उसके सामने खड़ा हो गया तो शान ने उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, चाबी दो, आज मैं खुद ड्राइव करूंगा, तुम यहीं रहो। उसका ऑर्डर बेचारा ड्राइवर कैसे ना मानता, उसने चाबियां उसके हाथ में थमा दी तो शान ने अपना बैग अंदर रखा और दूसरी तरफ से खुद भी बैठ गया। कार तेजी से विला से बाहर निकल गई। वो गुस्से में फुल स्पीड में कार भगा रहा था। आरवी की बातें उसके दिमाग में घुल रही थीं और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कार सीधे ऑफिस के पार्किंग में आकर रुकी। शान ने गेट खोला और ऑफिस के अंदर चला गया। रास्ते में जो उसे देखता उसे गुड मॉर्निंग विश करता, पर शान बस सीधे चला जा रहा था। वो हमेशा ही गंभीर रहता था, पर आज उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। ये देखकर सभी हैरान परेशान रह गए थे, पर हिम्मत कौन करता उसे कुछ कहने की, तो सब अपने अपने काम में लग गए। शान अपने कैबिन में घुसा और बैग टेबल पर रखते हुए उसने पेपरवेट उठाया और गेट की तरफ फेंक दिया। ठीक इसी वक्त गेट खुला और एक लड़के ने अंदर कदम रखा, पर जैसे ही पेपरवेट उसकी तरफ आया उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गईं। उसने झट से दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। पेपरवेट दरवाजे से टकराकर नीचे गिर गया। बाहर खड़ा लड़का अब भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी तो जान ही निकलने वाली थी, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकलता तो वो पेपरवेट सीधे उसके सर पर लगता। अंदर खड़े शान ने अब रौबदार आवाज में कहा, कार्तिक अंदर आओ। आवाज़ सुनकर कार्तिक ने झट से दरवाज़ा खोला और डरते हुए बस एक कदम ही अंदर आकर रुक गया और अपने हाथ में पकड़ी फाइल आगे बढ़ाते हुए बोला, सर ये उन कैंडिडेट्स के पोर्टफोलियो हैं जो हमारे वैक्स शो के मेल लीड के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अब इन सबका स्क्रीन टेस्ट होना है, उसके बाद फाइनल होगा कि ये रोल किसे मिलेगा। रेहान सर ने आपको इसे एक बार देखने को कहा है और ये भी कहा है कि स्क्रीन टेस्ट कल 10 बजे है। ऑडिशन में आप नहीं थे इसलिए कल आपको भी ऑडिटोरियम में आना है। ठीक है, फाइल टेबल पर रखो और रेहान को कहो कि मुझसे आकर मिले। शान ने टेबल की तरफ इशारा किया तो कार्तिक ने झट से फाइल टेबल पर रख दी और ओके सर कहकर बाहर जाने लगा, पर गेट के पास पड़ा पेपरवेट देखकर वो रुक गया। उसने पेपरवेट उठाकर शान को देखा तो शान ने आंखों से टेबल पर रखने का इशारा कर दिया। कार्तिक ने सर हिलाया और झट से कैबिन से बाहर निकल गया। कुछ देर में रेहान ने वहां कदम रखा और बिना डोर नॉक किए सीधे अंदर घुस गया तो शान नजरें उठाकर उसको घूरने लगा। रेहान आकर उसके सामने बैठते हुए बोला, अब ऐसे घूर क्या रहा है, डरता हूं तुझसे, बचपन से ऐसे ही लुक्स देता रहता है, अब तो बदल जा, बोर हो गया हूं मैं। शान ने उसको घूरते हुए सवाल किया, ज्यादा बकवास मत कर, और ये क्या गार्डन है जो मुंह उठाकर घुसा चला आया। बदले में रेहान चेयर पर पसर कर बैठते हुए बोला, मेरे यार का कैबिन है तो ऐसे ही घुसूंगा, मुझे बाकी लोगों की तरह यहाँ आने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। शान ने अब कुछ नहीं कहा पर उसको गुस्से से घूरने लगा तो रेहान ने उसके सामने सीधे बैठते हुए अब गंभीरता से सवाल किया, चल बहुत घूर लिया मुझे, अब चुपचाप बता क्या हुआ है, आज सुबह सुबह गुस्से में लाल पीला होकर कहाँ से आया है और ये ज्वालामुखी बने क्यों घूम रहा है। उसके सवाल को सुनकर शान के दिमाग में एक बार फिर आरवी की कही बातें घूमने लगी और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब बता भी ऐसा भी क्या हुआ है जो तू आज इतना गुस्सा कर रहा है सब पर, रेहान की आवाज़ ने उसको वर्तमान में खींचा। शान ने उसे देखा फिर गहरी सांस छोड़कर खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोला, कुछ नहीं, ये सब छोड़ और तू मुझे ये बता कि फाइनेंसर से मीटिंग हो गई। रेहान ने भी गंभीरता से जवाब दिया, हाँ वहाँ से सब सेट है, मेल लीड्स तो सिलेक्ट हो जाएंगे, पर ध्यान रखियो बाकी का कास्ट भी बेस्ट होना चाहिए और उनके ऑडिशन तो खुद लेगा, मैं इस शो में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, जानता हूँ, और तू चिंता मत कर, मैं खुद सब देख रहा हूँ और इस शो के लिए बेस्ट डायरेक्टर भी सिलेक्ट किया है, स्क्रिप्ट राइटर भी बेस्ट है, सब अच्छा होगा। मिस्टर ठाकुर के न्यू शो के बारे में कुछ पता चला, मुझे किसी भी हालत में उनके शो के लॉन्च होने से पहले अपने शो को ब्रॉडकास्ट करवाना है, वो भी स्टार प्लस पर। इस वक्त उसकी आंखों में अलग ही गुस्सा और जुनून नजर आ रहा था। उसकी बात सुनकर रेहान भी उसी लहजे में बोला, जहाँ तक मुझे खबर मिली है अगले महीने के लास्ट में उनका शो ब्रॉडकास्ट होना शुरू होगा और उससे पहले हमारा शो स्टार्ट हो जाएगा, वो भी उसी चैनल पर, उसी टाइम पर जिस टाइम पर वो अपना शो ब्रॉडकास्ट करवाना चाहते हैं, और हमारा शो उनके शो को कड़ी टक्कर देगा, देखियो इस बार हमारा शो नंबर 1 पर जाएगा। शान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर बात करने के बाद रेहान वहां से चला गया और शान भी आरवी की बातों को भूलकर काम में लग गया। सारा दिन वो काम में लगा रहा और शाम को घर के लिए निकल गया। रेहान भी घर के लिए निकल गया। ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और रेहान रश्मि के ख्यालों में खोया बाहर देख रहा था। उसके बात करने का अंदाज, जैसे वो उससे चिढ़ती थी, सब रेहान के दिल पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गया था। उसका चिढ़ते वक्त और भी प्यारा लगने वाला चेहरा रेहान की आंखों के आगे घूम रहा था। वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसकी नजरें रोड साइड परेशान खड़ी रश्मि पर पड़ी, तो उसने झट से कार रुकवाई और बाहर निकलकर उसके पास चला गया। रश्मि अपनी स्कूटी के पास खड़ी उसको गुस्से से घूरते हुए बड़बड़ा रही थी, तुझे भी अभी खराब होना था, वैसे ही आज लेट हो गई हूँ, माँ कितना परेशान हो रही होंगी, कुछ देर बाद दम तोड़ देती, मैं घर तो पहुँच जाती, बीच रास्ते में ही मेरा साथ छोड़ दिया, धोखेबाज निकली तू भी, अब मैं घर कैसे जाऊँगी, घर पहुँच जाती फिर खराब होती तो पापा को कह देती, वो ठीक करवा देते, अब इस वक्त क्या करूँ मैं तेरा, तुझे छोड़कर भी नहीं जा सकती और घसीट कर इतने दूर लेकर जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए मैं कह रही हूँ स्टार्ट हो जा, घर जाते ही बंद पड़ जाइयो। उसने एक बार फिर अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो उसका मुंह छोटा सा हो गया। तभी उसके कानों में रेहान की आवाज पड़ी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? रश्मि को आवाज पहचानते वक्त नहीं लगा और उसके भाव एकदम से बदल गए। उसने सर घुमाकर रेहान को देखा और उसको घूरते हुए बोली, कुछ भी करूं तुमसे मतलब? उफ, तुम्हारी ये अदा, रेहान मन ही मन बोला। उसके भाव देखकर रेहान उसको आंखें छोटी छोटी करके घूरते हुए बोली, पागल वागल हो गए हो जो बिना बात के बत्ती सी चमकाए जा रहे हो। आवाज सुनकर रेहान अपने ख्यालों से बाहर आया और उसे देखकर मुस्कुराकर बोला, इसे मुस्कुराना कहते हैं, दांत नहीं देखते इसमें। जो भी हो मुझे इससे क्या, रश्मि ने मुंह बनाते हुए कहा और सामने देखने लगी। तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई? कुछ देर उसको देखने के बाद रेहान ने उससे सवाल किया। उसका सवाल सुनकर रश्मि ने उसकी तरफ नजरें घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी नहीं, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम अपना रास्ता देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और अभी मुझे अपना मूड खराब नहीं करना है। उसने रेहान को गुस्से में घूरा और उस पर से नजरें हटा ली, पर रेहान ने जाने के लिए कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि उसने दोबारा कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। जी नहीं, मुझे आपके एहसान की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। रेहान ने संजीदगी से सवाल किया, तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? हम पहले बस एक ही बार मिले हैं और जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम मुझसे चिढ़ो, और अगर कुछ कहा भी होगा तो बस मजाक ही किया होगा। अब तुम मेरी भाभी की दोस्त हो तो थोड़ा बहुत मजाक तो चलना चाहिए।
रश्मि सोच में पड़ गई कि आखिर वो उसे इतना चिढ़ती क्यों है, पर उसे ऐसा कुछ याद नहीं आया जिसकी वजह से वो उससे चिढ़े, तो उसने तंग आकर कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं पसंद। इतनी भी खराब शक्ल नहीं मेरी, कॉलेज टाइम पर बहुत सी लड़कियां मरती थीं इसी चेहरे पर। मरती होंगी, पर मैं उनमें से नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी शक्ल नहीं पसंद तो बता दो कि कैसी शक्ल पसंद आएगी तुम्हें, मैं प्लास्टिक सर्जरी करके वैसे ही शक्ल बनवा लूंगा अपनी। रेहान की बात सुनकर रश्मि की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके और मुंह खोलकर उसे देखा तो रेहान की हंसी छूट गई। इसके साथ ही रश्मि के भाव बदल गए और उसने चिढ़कर कहा, क्या है, बेवजह दांत क्यों फाड़ रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या? कहो तो पागलखाने फोन लगा दूं। उसकी जरूरत नहीं है, मेरे मजाक पर तुम्हारे जो एक्सप्रेशन थे उसे देखकर हंसी आ गई थी। वैसे एक बात कहूं, पहली मुलाकात में किसी के लिए कोई राय नहीं बनानी चाहिए। सुना तो होगा ही, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सामने वाले को एक मौका तो देना ही चाहिए कि वो आपको बता सके कि एक्चुअली में वो कैसा है। रेहान अब काफी संजीदगी से बोला और लबों पर हल्की मुस्कान सजाए उसे देखने लगा। रश्मि के भाव अब कुछ कोमल हो गए थे, पर उसने कहा कुछ नहीं, दूसरी तरफ देखने लगी तो रेहान ने ही आगे कहा, छोड़ो, मुझे एक मौका देना न देना तुम्हारी मर्जी है, फिलहाल के लिए तो तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, चिंता मत करो, मेरे साथ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर एक बार फिर रश्मि का पारा हाई हो गया। रेहान उसको मुस्कुरा रहा था। रश्मि ने उसको घूरती हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो ये? पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ही नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर चली भी गई तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं उन छुई मुई लड़कियों के जैसी नहीं हूँ जो अपने साथ गलत होने दे। अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। रश्मि ने उसको धमकी ही दे डाली, जिसे सुनकर रेहान बस मुस्कुरा रहा था। रश्मि उसको गुस्से से घूर रही थी। अब रेहान ने गॉगल्स निकाले और आंखों पर लगाते हुए कहा, ओके देन, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं लेनी तो ठीक है, यहाँ खड़ी रहो, कुछ देर में रात हो जाएगी। अभी तो मैं हूँ जो तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, पर रात होते ही यहाँ ऐसे सड़क छाप आवारा घूमने लगेंगे जो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो गिनती में ज़्यादा भी हुए तब भी तुम उनसे अकेले निपट ही लोगे। रश्मि ने उसके चुप होते ही फट से कहा, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? पर मिस्टर, मैं किसी से नहीं डरती। रेहान हल्का मुस्कुराया, फिर पीछे की तरफ कदम हटाते हुए बोला, नहीं, तुम्हें अलर्ट कर रहा हूँ, अब तुम्हें फिर भी मेरे साथ नहीं चलना तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो दूसरी तरफ घूम गया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। टू बी कंटिन्यूड।